अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। अभी थोड़ी देर पहले आपने हेडलाइन सुनी होगी कि सियासी और अस्करी क्यादत ने इंटरनेशनल खबरों को रद्द कर दिया है। क्या बात है कि रियासत और हुकूमत को 4 दिन लग गए इंटरनेशनल खबरों को रद्द करने में या एक क्लियर मौकफ सामने लाने में। हम देखते हैं कि पहले खामोशी रही और उसके बाद देखने में आया कि कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट सामने आ रही थी। टू अंडरस्टैंड दिस, आपको हमारे मुल्क के अंदर काम किस तरह होता है ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए आपको बताया चलूं कि आईएसआई के साबिक सरबरा असद दुरानी कहा करते थे कि पाकिस्तानी वजारत खारजा तो पहली इदारा है कि जो पॉलिसी साज नहीं हुक्म बजा आवरी का काम करता है। नाजरीन फिर ज्यादा दौर में गैर मुल्की सफारतकार मजे ले लेकर यह बताया करते थे कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में वजारत दिफा से ज्यादा फौजी अफसर नजर आते हैं। खैर, इस अलमिया की तारीख तो अनफॉर्चुनेटली उतनी ही पुरानी है कि जितना पाकिस्तान का कयाम। लेकिन एक दो मिसालें फिर भी आपके सामने पेश कर देते हैं। 1948 में वजीर आजम लियाकत अली खान को रूस से दावतनामा मौसूल हुआ तो मौसूफ अमरीका चल दिए। और अब एक और कुछ अरसे कबल ही आबदा हुसैन बीबी के साथ हमारी बैठक हुई और खारजा पॉलिसी के चंद रहनुमा असूलों पर तबसरा कर रही थी। कह रही थी कि अयूब खान ने बटबीर का हवाई अड्डा हवाले करते हुए अमरीका को एक सादा सा फॉर्मूला गोश गुजार किया था कि आप हाथ गर्म करते रहिए, हम आपके बिछाए हुए मैदान जंग में उतरते रहेंगे। नाजरीन, आज एक बार फिर मैदान अरब से बुलावा है, लेकिन मजबूरियां दो हैं। एक तो माली इमदाद और दूसरा जाते शरीफ। 17 मार्च को वजीर आजम के मुशीर सरताज अजीज ने सेनेट की खारजा अमूर कमेटी को यह बताया था कि 1.5 अरब की रकम सऊदी हुकूमत की जानिब से दे दी गई है। नेचुरली अरकीन का सादा सा सवाल था कि इसके इवज पाकिस्तान को क्या करना होगा। जवाब, तवील तरीन खामोशी। और अब आके बाखबर लोगों में यह सकूत अब आके टूटा है कि जब सऊदी शाह फरमान की दावत पर अभी हाल ही में शरीफ ब्रादरान सेनेट इंतखाबात छोड़ छाड़कर वहां पहुंच गए। इस्लामी सरबरा कॉन्फ्रेंस के 40 से जायद गैर अरब ममालिक में कमोबेश सबसे पहले पाकिस्तान सर पे कफन बांध चुका है। अब यह सोचने की जहमत किसे है इस मुल्क में कि पाकिस्तान को इस जंग में कूदने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। किस सूरत में चुकानी पड़ सकती है यह भी एक सवाल है। पाकिस्तान में नजरियाती तफरुकात मजीद भी गहरे हो सकते हैं। हमें इस नुक्ते पर गौर करने की जरूरत ही क्या है कि अगर यमन और सऊदी झगड़ा खालिस्तन अरब का झगड़ा है तो फिर पाकिस्तान को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। गौर और फिक्र के ये तमाम हाशिए वहां खींचे जाते हैं कि जहां खारजा पॉलिसी मुल्क के लिए बनाई जाती है, वरना इन नुकात की फिर औकात ही क्या है। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि बयानात और हकीकत में कितना फर्क है। स्टे विद अस ऑन न्यूज आई। शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं जियाउद्दीन साहब, सीनियर सहाफी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अलामा ताहिर अशरफी हमारा साथ दे रहे हैं, आप चेयरमैन उलमा बोर्ड पाकिस्तान हैं और दियोबंदी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं। नासिर शिराजी साहब, सेक्रेटरी सियासियात मजलिस वादतुल मुस्लिमीन फिकाए जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जियाउद्दीन साहब, आपसे आगाज करूंगी। हुकूमत को, रियासत को अभी अस्करी और सियासी क्यादत ने वाजे किया है कि तमाम तरह इंटरनेशनल खबरें जो हैं उनको हम रद्द करते हैं। अभी आप देख रहे थे कि सऊदी अरेबिया की एसपीए जो है आपकी न्यूज़ एजेंसी, उसने भी कहा कि पाकिस्तान ने हमायत की का ऐलान कर दिया है। फिर आपके सऊदी अरेबियन ब्रॉडकास्टर अल अरेबिया ने भी कहा पाकिस्तान ऑन बोर्ड, एंड सेम गोज़ फॉर सीएनएन के जो अभी तक कह रहा है कि 15 जेट तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ऑन ग्राउंड डिप्लॉय, ऑन इन एयर डिप्लॉय हो चुके हैं। सर, इज दिस सऊदी कैंपेन, इसको मीडिया कैंपेन कहें या हमारी जानिब से मुबहम फॉरेन पॉलिसी है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्या है?
देखिए, वेदर वन लाइक्स इट और नॉट, पाकिस्तान इज ए डेमोक्रेसी। यहाँ पर मैं नहीं समझता कि आप कोई चुप कोई काम ऐसा कर दें जो किसी को ना पता चले। 200 मिलियन की पॉपुलेशन का मुल्क है और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं और सब एक फौज का इंस्टीट्यूशन है, उनसे भी इजाजत लेनी पड़ेगी कि भाई एयरफोर्स को भिजवाएं या नहीं भिजवाएं। कोई ना कोई हायरार्की यहाँ पर है, ऐसा तो नहीं कि भाई कोई उठकर आप
भिजवा। जियाउद्दीन साहब, आप और मैं एक ही फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, मगर फिर भी चाहे उसामा बिन लादेन के ऊपर छापा उसको पकड़ा जाए या ये खबर हो यमन के हवाले से, फिर सबसे पहले इसकी ब्रेकिंग बाहर से आती है। आप कह रहे को छुपाया नहीं जा सकता, हम तक खबर लेट पहुंचती है, हम तक इतलात जो है वो फिर भी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आते हैं। 4 डेज हैव पास्ड।
हाँ, उसामा का केस टोटली डिफरेंट है, ये उस केस को हम इस पे तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि भाई, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने परसों जब बात हुई थी टेलीफोन पे, उन्होंने ये कहा था कि हमारी हर चीज़ आपके लिए तैयार है, आपके लिए हम हाजिर करते हैं, तो इसका मतलब शायद इंटरप्रटेशन जो उन्होंने लिया है कि भाई वो काम शुरू हो गया, हमारे पास जो है ना उनकी इमदाद आ गई है। लेकिन असल में मसला यहाँ, सबसे बड़ा मसला सऊदी अरेबिया का ये है कि उनकी जो फ़ौज है आधे से ज़्यादा एमनी है, और उनके ताल्लुकात जो अपने ख़ानदानों के साथ एमन के हैं, तो वो अपनी फ़ौज को इस्तेमाल करते हुए वो झिझकते हैं। उन्हें चाहिए कोई ऐसा मुल्क जो अपनी ट्रूप्स भेज दे, लेकिन मैं पाकिस्तान खुद इतना बड़ा आजकल,
यही वजह है कि 65 अरब का डॉलर का जिसका बजट है डिफेंस का, वो 6 अरब डॉलर के डिफेंस बजट वाले मुल्क से कह रहे हैं हम आके इमदाद कर दो।
देखिए ना, अभी पिछले साल इसी साल उन्होंने जो खरीदे आर्म्स तकरीबन 6 अरब के, और अगर यूएई के भी आर्म्स मिला लें तो 8 अरब के हथियार इन्होंने खरीदे हैं 2014 में पिछले साल, और अभी कहते हैं कि अब 56% और इंक्रीज होंगे इनकी। तो इतनी ज़्यादा हथियार जिस मुल्क में हों उसके चलाने वाला नहीं उनके पास, तो इसके लिए तो चाहिए उनको कोई ऐसा मुल्क चाहिए जहाँ के एक्सपीरियंस किस्म की मिलिट्री हो।
69 में भी इक्विपमेंट इनके पास थी मगर पायलट्स हमारे गए थे फॉर द सेम इंकर्जन, यमन साउथ यमन की तरफ से ही खतरा हुआ था तब।
लेकिन हम बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है, सोचो हमारा एयरफोर्स भी तीरा वैलीज में।
सर दैट्स अनदर इशू, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, आई वांट टू नो कि इधर कंफ्यूजन क्यों पाई जाती है, हर चीज खामोशी में सीक्रेसी के अंदर क्यों लगता है कि की जा रही है।
मैं नहीं समझता कि कोई सीक्रेसी इस मामले में बरत सकेंगे, क्योंकि दुनिया
एज ऑफ राइट नाउ आपके नजदीक क्या स्टेटस है हमारा?
मेरे ख्याल से दे आर स्टिल वॉचिंग ए सिचुएशन, और वो जो कहते हैं ना कि भाई ना तो नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते, इस डायलेमा में उनका मसला है।
क्या बात है शिराजी साहब, ना आखिरकार कैसे करें? सऊदी अरब वो मुल्क जिससे करीब तरीन ताल्लुकात मियां साहब के भी, आप ये जानते हैं, मैं कुछ स्टैट्स देख रही थी, जुलाई 2014 से लेकर जून 2015 तक आपके मुल्क में, यानी कि 7 महीने का टाइम स्पैन है, आपके मुल्क के अंदर कोई 10 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई। इसके अंदर आप यकीन माने कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एंड इंक्लूडिंग ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया, 65% इनकी जानिब से आया था, 65% यहां से आया था आपका 10 अरब डॉलर के अंदर से। फिर सर आप देख रहे 98 के अंदर ऑयल के हवाले से भी फैसिलिटी दी गई, मेजर सप्लायर भी है, कंसेशनरी रेट्स पे दिया जाता है, 25 लाख पाकिस्तानी भी वहां रहते हैं, जस्ट स्पीकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया इटसेल्फ, ना किस तरह करें शिराजी साहब?
देखिए मेहर, आपने पहले तो जो नुक्ता उठाया ना, देखिए हमारी फॉरन पॉलिसी जो है ना, ये बुनियादी तौर पर फॉरन पॉलिसी नहीं है, ये फॉरन पॉलिसी है कि इमीडिएट आपके ऊपर एक प्रेशर आ गया और आपने उस पर फौरन एक रिस्पॉन्ड कर दिया, उसको रिस्पॉन्स दिया, आपने नहीं सोचा, आपने गौर फिक्र नहीं किया कि इस मामले पे हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। आप कहती हैं कि हमारे रेशन हैं, उसके नतीजे में उनसे फंडिंग मिलती है, उनसे ऑयल मिलता है, हमारे वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी इललेजिटिमेट काम के अंदर फ्रीक बन जाएं, आप पाकिस्तान को एक ऐसी आग के अंदर झोंक दें जैसा कि पहले अफगानिस्तान वर्जन एक हो चुका है, आप तजर्बा कर चुके हैं, आज उसी की फसल काट रहे हैं, एक और नया अफगानिस्तान बनाने जा रहे हैं हम। मसला ये हुआ है कि नून लीग की हुकूमत को जो उजलत है वो एहसान चुकाने की उजलत है, ये वो शहजादा मुकरन है कि जो सिग्नेटरी हैं उस दस्तावेज के जिसके तहत नवाज शरीफ साहब यहाँ से जान बचाकर गए, आज वही मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी पीएमएलएन गवर्नमेंट रजीम जो है, ये जब ये कहती है कि सऊदी अरब की जो वो वहां पर हुकूमत को, आईनी हुकूमत को रिस्टोर करना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि जब बज़ाहिर ये पाकिस्तान के अंदर एक आईनी हुक्मरान थे और इन्हें यहां से निकलने पर मजबूर किया गया था, तो उस वक्त सऊदी अरब ने इनको वहां पर बचाया तो जरूर था, लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान के मुकाबले में कोई एक्शन करने के लिए नहीं आया था। लिहाजा दुनिया के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसके कुछ असूल होते हैं, क्या हमने फॉरेन पॉलिसी हुक्मरानों के साथ बनाई है या आवाम के साथ बनाई है? क्या हमने नहीं देखा कि यमन के अंदर जो तकरीबन करोड़ों की आबादी का मुल्क है उसके अपने डायमेंशन हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर क्या इंपैक्ट्स होंगे? क्या हमने ये नहीं देखा कि अगर उस कुत्ते खित्ते के अंदर जंग लग जाएगी और इस जंग के अंदर फिर ये सारा खित्ता इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसके पाकिस्तान और पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर इंप्लीकेशन नहीं होंगे क्या? मैं आपसे पूछता हूं, एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो इस वक्त खुद एक दाखिली आग के अंदर शिकार है और हमारे
मैं शिराजी साहब कथा कलामी माफ, मैं तो सरहन इसके ऊपर तो कोई डिबेट ही नहीं है ना कि मियां साहब के क्या ताल्लुकात हैं रियाद से, दैट्स नॉट अंडर डिबेट। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर सऊदी अरब के जिससे इतनी मुआशी डिपेंडेंसी है, सोशल टाइज इतने ज्यादा हैं, रिलीजियस टाइज इतने ज्यादा हैं, एंड इसके कंपेरिजन में अगर आप ईरान को देखें तो अगर स्टैट्स को ही मुलायजा कर लीजिए, गैस है तो वो महंगी तरीन दे रहा है, अगर आपके कीनू चावल आम है तो वो दुबई से भारतीय खरीदे जाते हैं, हमारे नहीं खरीदे जाते, किसी किसी तौर का किसी किस्म का تعاون نہیں ہے, کوآپریشن نہیں ہے, کوئی امداد نہیں ہے. سو اگین اگر آپ اسٹرکٹلی اس طرح دیکھیں کہ بھائی اگر یہ دو ممالک ہیں اور کون سی پوزیشن نہیں ہے, تو what do you think a state would do,
سر? پاکستانیت کی بنیاد پہ کہنا چاہوں گا, میں اسے ایران اور سعودی عرب کے مابین ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا. بینگ اے پاکستانی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, کیا پاکستان کے خود, میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, کیا پڑوسی بدلے جا سکتے ہیں؟ لیکن پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے ہیں, آپ کو دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے. اور یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آپ کو وہ فنڈنگ دیتے ہیں, آپ کو پیسہ دیتے ہیں, آپ کے شخصی تعلقات تو نہیں ہیں نا, اگر آپ کے تعلقات کچھ پرنسپل بیسڈ ہیں.
شرائع صاحب اگر آپ موقع دیں, یہی میں نقطہ علامہ طاہر اشرفی کے پاس لے کے جاؤں گی. اشرفی صاحب یقینی طور پہ پڑوسی نہیں بدلے جا سکتے, ایران کا بھارہا ایک کردار اب افغانستان میں بھی ہوگا, بحالی کے حوالے سے ماضی میں بھی تھا اب بھی ہوگا. چین بھی اس حوالے سے خوش نہیں ہے کہ پاکستان اگر کوئی کردار ادا کرے. چین کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں, جو ایک اکنامک ٹائز بھی ہیں, جتنی ڈپینڈنسی ہے وہ بھی سب پہ آیا ہے, تو پریشر تو ہوگا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنا مفاد دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا, پاکستانی قوم کا مفاد کس میں ہے. جہاں تک سعودی عرب اور ایران کی بات ہے, تو سعودی عرب نے تو ہر مشکل مرحلے میں, آپ نے خود ہی بیان کر دیا, آگے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ کیا پاکستانی فوج یمن بھیجی جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے. ابھی تک جو میری اطلاعات ہے, اور آج خواجہ آصف صاحب نے جو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بھی بڑا کلیئر کہا ہے کہ ایسی کوئی بات ابھی نہ سوچی جا رہی ہے, نہ وہاں سے کوئی ڈیمانڈ ہے. بات جہاں تک سعودی عرب کے تقدس اور دفاع کی ہے, تو سعودی عرب نے ہر جنگ میں پاکستان کے ساتھ دیا ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہو جائے حجاز مقدس کے اوپر, جیسا کہ بعض دہشت گرد تنظیموں کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ حجاز مقدس کے اوپر حملہ ہو جائے اور پاکستان جو ہے وہ بیٹھا تماشا دیکھتا رہے.
علامہ صاحب قطع کلامی معاف, حرمین شریف کے اوپر حملہ کسی بھی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے, تب تو ہر کوئی میدان میں اترے گا. سوال صرف یہ سر کہ آج کعبہ مکہ مدینہ کے اوپر جنگ کا جو یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے, کیا یہ آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ بالکل اسی کہانی کے مترادف ہے جس طرح ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے کے لیے عراق پہنچ گیا تھا امریکہ؟
یہ بات یہ ہے کہ سر, اگر آپ یمن کے حالات کو دیکھیں, تو میرا خیال ہے ہمارے ہاں چونکہ پاکستان کے اندر, میں کل پرسوں سے جو بیانات بھی پڑھ رہا ہوں, اجلاس بھی دیکھ رہا ہوں, ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی شیعہ سنی کی لڑائی ہے, اور یہ یمن میں نہیں لڑی جانی, یہ پاکستان میں لڑی جانی ہے. اور بھائی خدا کا خوف کرو, حوثی باغیوں کے اندر بھی جو ہے سنی موجود ہے, اور حکومتی پارٹی کے اندر بھی شیعہ موجود ہے, ان کو اپنا کام کرنے دو. یمن کی حکومت نے سعودی عرب سے اور عرب اتحاد سے امداد مانگی ہے, جس پر سعودی عرب وہاں گیا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جب ہمارا کوئی فوجی جائے گا یمن میں, اس وقت ہم بات کر لیں گے, اس وقت ہم سوچ لیں گے. ابھی جہاں تک بات ہے سعودی عرب کے دفاع اور استحکام کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. سعودی عرب نے ہر جنگ, میں جنگ کی بات کر رہا ہوں, امن کی بات نہیں کر رہا, ہر جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے, ہر حکومت کے دور میں, خواہ وہ زرداری صاحب کی ہو, خواہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ہو.
علامہ صاحب پورا نقشہ کھینچے نا لوگوں کے سامنے, معذرت کے ساتھ, پھر پورا نقشہ کھینچے. سعودی عرب جتنے ادھر پیسے بھیجتا ہے, کون کون سے مدارس کو فنڈ کرتا ہے, کون سے فقہ کو فنڈ کرتا ہے, کون سی پروکسی وار اس ملک کے اندر چھڑی ہوئی ہے, اس کا بھی پورا نقشہ کھینچے. آپ کے آج بھی امبیسڈر ہیں سعودی امبیسڈر ٹو دی سٹیٹس عادل الجبیر, ان کا یہ کہنا تھا 2007 میں, ان کا یہ کہنا تھا, میں آپ کی جانب آتی ہوں سر, 2007 میں کہنا تھا کہ ہم آبزرورز نہیں ہیں پاکستان میں, وی پارٹیسپینٹس.
ایک منٹ مجھے بات کر دیں. سو ہم نے ایک سیکنڈ جی, 16 دسمبر کے بعد سے لے کر آج تک میں کم از کم 100 ٹی وی پروگراموں میں اور کوئی اتنی پریس کانفرنسوں میں وزیر داخلہ صاحب سے اپیل کر چکا ہوں کہ بھئی بتائیے کون سے مدارس ہیں جن کو غیر ملکی امداد ملتی ہے. یہاں پر جو ہے اگر کہیں سعودی عرب امداد دیتا ہے تو یہاں ایران بھی دیتا ہے, یہاں جب لیبیا تھا وہ بھی دیتا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ کہہ کے ہم اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ جناب وہ ہمارے ہاں انتہا پسند یا فرقہ پرست تنظیموں کو امداد دیتے ہیں. تو لہٰذا سعودی عرب سے پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ دو قوموں کے تعلقات ہیں, دو ملکوں کے تعلقات ہیں. یہاں نواز شریف صاحب کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ
سیم گوز فار ایران سر. اگر آپ مجھے علامہ صاحب اجازت دیجیے, سے ان اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ میٹر تھوڑا سا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. پرنس بالکل سر, پرنس ولید ابن طلال جو ہیں وال اسٹریٹ جرنل کو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا نواز شریف جو ہیں सऊदी अरब के लिए पॉइंट मैन है, सऊदी पॉइंट मैन है हमारा। तो शायद मियां साहब के लिए फैसले आसान हो, मगर क्या एस्टैब्लिशमेंट के लिए फैसले उतने ही आसान है, कीपिंग इन माइंड कि अब फौज ने सफाया करने का मुल्क में जो है वो फैसला कर लिया है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किसकी प्रॉक्सी वॉर इधर छेड़ी जा रही है, ये सब है यार।
नहीं देखिए, बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू तो है ये, यानी सऊदी अरेबिया का इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में पीएनए के मूवमेंट में। मुझे याद है जब भुट्टो साहब का पीएनए का झगड़ा चल रहा था तो मीडिएशन के लिए सऊदी अरेबिया ने इंटरवीन किया था, और जाहिर है कि हमारे 2 मिलियन के करीब जो वर्कर्स हैं पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया में हैं, उनका भी ख्याल करना पड़ेगा। न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने ओबलाइज किया वो तो अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान एज ए नेशन भी ओबलाइज है। इन्हें जब हमने टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उस वक्त उन्होंने ऑयल कंसेशन पर हमें दिया था, तो इन्हें इस किस्म की मदद वो अक्सर करते रहे हैं, तो वी आर ओबलाइज। लेकिन इस ऑब्लिगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी दूसरे मुसलमान मुल्क पे हमला कर रहे हैं तो हम आपके साथ जाके शामिल हो जाएं।
अच्छा सर, एक मक्फा ले लो, बिकॉज यू नो वाई सर, अगेन अगर बुनियादी सवाल एक आम आदमी के लिए, शायद कोई पैरोकार नहीं है इस जंग से अभी, मगर बार बार जो मीडिया में सवाल उठा हुआ है कि हम पार्टिसिपेट करें ना करें, करें या ना करें, तो ऑप्शन तब है ना जब ना करने की ऑप्शन आपके पास है, और अपेरेंटली एक शॉर्ट टर्म डील भी हुई, शॉर्ट टर्म के लिए हम अपने ट्रूप्स भेज देंगे सऊदी अरेबिया अगर कोई सऊदी अरेबिया को खतरा लाहक हो, इस तरह की एक अग्रीमेंट अपेरेंटली है, राइट? दैट्स व्हाट वी आर ऑल हियरिंग। इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है आपको बताएंगे। And no love lost for Ziaul Haq, मगर जनरल जिया ने क्या कहा था 30-35 साल पहले, आपको दिखाएंगे एक वक्त के बाद। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। हिना रवानी खर साहिबा मौजूद हैं, साबिक वजीर खारजा हैं इस मुल्क की। हिना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अगर मियां साहब के लिए मजबूरी है मुस्लिम लीग नून के लिए, तो हिना बीबी महसूस ही हो रहा है कि पीपल्स पार्टी के लिए सब कुछ हैव यू रिटायर्ड रियली ऑनेस्टली? रहमान मलिक साहब को फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बयान देने के लिए आपने आगे कर दिया?
नहीं, आई थिंक देखिए, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द पार्टी आर ऑब्वियसली कमेंट ऑन प्रैक्टिकली एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड दे आर ऑल नेशनल इश्यूज एट सम लेवल।
आई मीन उन्होंने कहा कि अगर सऊदी अरब और यमन के हालात दुरुस्त करने हैं तो जरदारी साहब मीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं।
देखिए, मतलब ऑन अ सीरियस नोट,
आई एम द ओनली वन लाफिंग। जी
नहीं, मतलब देखिए, ये जो मुल्की फैसले होते हैं पर्टेनिंग टू नेशनल फॉरेन पॉलिसी, ये किसी के जाति मफादात या जाति ताल्लुकात के ऊपर अगर मबनी होना शुरू कर दें तो फिर फ्रेंकली स्पीकिंग वही हाल होगा जो हमने पाकिस्तान में पिछले कई दहाइयों में देखा है। और अभी आप एक अजीब सी कश्मकश में एक मुल्क को डाल रहे हैं, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस वक्त एक फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, एक ऐसे मुल्क में जिसकी बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में, क्या आप अवाम को, नॉर्मल सिटीजन को तहफ्फुज दे चुके हैं कि अब आप जाके येमेन में?
अच्छा, सो हिना साहिबा, अगेन मैं फिर आपसे मुख्तसरन पूछूंगी, हमारे पास ऑप्शंस ही क्या हैं? बिकॉज अपेरेंटली फॉरेन ऑफिस ने ये कहा कि हम अभी सोच रहे हैं, गौर और फिक्र कर रहे हैं कि ऑप्शंस क्या हैं। आज भी बैठक थी तीसरी दफा अस्करी और सियासी क्यादत की, ऑप्शंस क्या हैं, गौर करते हैं। कल फाइनली डेलीगेशन सऊदी अरब जाएगी, 2 दफा ट्रिप कैंसिल होगी, व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव एग्जैक्टली?
देखिए, ऑप्शंस are always on the table and options go up, it depends on which perspective you coming from, right? For instance, aapko yaad hoga ki Pakistan People's Party ke daur mein ek bahut bada issue bana tha on Syria, Bashar al-Assad saab and the entire western world, so to speak, and the entire or at least the majority of the Arab world ek side pe the, lekin humne us waqt bhi aur Turkey jaise mulk bhi ऑन वन टू वन बेसिस उनकी लीडरशिप ने हमारी लीडरशिप को कॉल की, यहाँ पे आए। आपको शायद याद हो, एक समिट हो रहा था उन दिनों में, G8 समिट, जिस पे वो यहाँ आए, प्रेशर पड़ा। लेकिन हमने उस वक्त यही कहा कि जी, पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि पाकिस्तान कहीं पे भी कोई भी रोल प्ले करे, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी मुश्किलात इतनी है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी एनर्जी सिर्फ अपनी मुश्किलात को सॉल्व करने में कॉन्सेंट्रेट करें।
साहब, माजरत के साथ कहते हैं, हम हमेशा कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप ही की जमात के यूसुफ रजा गिलानी साहब वजीर आजम थे ना, जिनकी विकीलीक्स आई थी कि भाई ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ड्रोन्स को कहते रहेंगे खराब हैं, बंद करो, ये है वो है, असल में जो होना करते रहो, चल लगाए रखो इन्हें।
आपको पता है कि हमने आके उसको जिस तरह उठाया और फिर सलारा के बाद जो हुआ, बट ये अगेन वी गोइंग इन हिस्ट्री। आई थिंक इस वक्त जो फैसला करने का है ही नहीं, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. इस वक्त ये फैसला टू पुट ऑप्शंस ऑन द टेबल आई थिंक इज अ रॉन्ग थिंग टू डू इन द फर्स्ट प्लेस. आप ऐसी चीज में, पाकिस्तान ने आज तक, आप मुझे बताएं कि दूसरों की जंगों का हिस्सा लेके क्या पाकिस्तान को हमने स्ट्रेंथन किया या वीकन किया? क्या हम अपने नेशनल इंटरेस्ट इसी तरह सर्व करते आए हैं? और अगर करते आए हैं, जब हमने एक प्रॉक्सीज अगर बनाए और यू नो तालिबान को अपना प्रॉक्सी समझा जिन दहाइयों में, तो क्या उसका हम कमीना नहीं भुगत रहे?
सब अमेरिका, सऊदी अरब के तोहफे. बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहब हमारे साथ देने का. ज़ियाउद्दीन साहब, जो मैं कहती हूँ ऑप्शंस क्या, 1980 की दहाई के अंदर इराक ईरान वॉर में हमारे पास ऑप्शन थी. हमने क्या किया, 40,000 लगभग आई गेस ट्रूप्स थे तब, सऊदी डिफेंस के लिए उधर खड़े कर दिए सिर्फ. एक ये ऑप्शन है कि बस डिप्लॉय कर दो. दूसरी ऑप्शन है कि ऑन ग्राउंड, जिसका अभी भी सोचा जा रहा है कि ऑन ग्राउंड ऑफेंसिव स्टार्ट कर देगा सऊदी अरब, उसमें ऑन ग्राउंड बंदे भेजो या अपने जेट तैयारे भेजो. दीज आर ऑप्शंस,
दीज आर ऑप्शंस. लेकिन बात सही है, 1990 में भी जो है ना, जब कुवैत को इन्वेट किया था सदाम ने, हमने भेजे थे एक ब्रिगेड और डिप्लॉय किया था हमने एट द एमन बॉर्डर. मतलब एक के पाकिस्तान इस बात के लिए शायद तैयार हो जाए कि डिफेंस, अगर सऊदी अरेबिया के डिफेंस की जरूरत पड़े, लेकिन इन्वेडिंग एमन यूजिंग आवर बूट्स, ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के लिए. और ये जो एक अजीब सी, मतलब वेग सी सिचुएशन, वेग सी पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं, इसकी रीजन यही है कि ना हम रिफ्यूज कर सकते हैं, ना हम कहते हैं कि हाँ हम आते हैं आपके लिए. हो सकता है कि ये पाकिस्तान ये सोच रहा हो कि जैसे साले ने, द फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसने ऑफर किया है कि सुलह हो जाए, कोई नया इलेक्शन हो जाए यमन में, ताकि ये इन्वेजन वगैरह की जो ज़रूरत ना पड़े. तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान वेट कर रहा है कि कोई नेगोशिएटेड
यमन में जिस तरह के इलेक्शन हुए हैं, वो तो हमारे सामने ही है ना. आई मीन पपेट रिजीम्स आपके सामने आती हैं. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो बना देता है बंदा बैठ के, और आई मीन एलाइज बन जाते हैं अमरीका के. सो दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस एज वेल, कि उधर क्या होता है या क्या सोच रहे हैं ये लोग. मगर अगेन द पॉइंट बीइंग, मैं शिराजी साहब आपकी जानेब आती हूँ. अगर लेट्स सी, बिकॉज ऑप्शंस की बात हो रही है, अगर एक स्पेशल मिशन को भेजा जाता है, क्योंकि अभी जिक्र हो रहा है, बात इतलात हैं कि रिजर्विस्ट जो हैं आपके, एक ब्रिगेड जो है उसको तैयार किया जा रहा है 3-4 साल के लिए भेजने के लिए सऊदी अरब में. मगर अगर एक स्पेशल मिशन जाता है यमन पाकिस्तान की जानिब से, तो आपको क्या खदशा है कि इसका किस सूरत में स्पिल ओवर इफेक्ट होगा पाकिस्तान में?
जी मेहर, मैं आपसे पहले ये चाहूंगा आप मुझे काइंडली थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे ये एक बात और इशू को, एक सीन क्लियर करने का. सीन ये है कि यमन के अंदर एक पॉपुलर मूवमेंट हुई है और लोगों ने उस प्रेसिडेंट को, कि जो अभी फरार होकर गया है, उसको कबूल करने से इनकार किया है. ये मूवमेंट अपराइजिंग के अंदर बदली है और उसके लिए वो इतना अनकैपेबल है कि वो यमन की सरजमीन पर रहने की पोजीशन में भी नहीं है कि किसी एक टुकड़े में बैठकर वो एक यमन की हुकूमत को गवर्न करने के लिए सिम्बॉलिकली बैठ सके. वो नहीं बैठ सकता है. वो वहाँ से चला गया, उसको बहाना बना के यमन की सरजमीन को इन्वेड किया गया, और इन्वेड करने के बाद बहाना ये बना दिया गया कि सऊदी अरब की सालमियत को खतरा है. इन्वेड भी आप कर रहे हैं और सालमियत की भी आपको खतरा है. जरा ये गौर कीजिए, इस पूरे खित्ते में ये वाहिद कंट्री है जो जीसीसी का मेंबर नहीं है, और जीसीसी का मेंबर ना होने के बावजूद ये वाहिद खित्ता है जिसके अंदर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं. वो वहां इलेक्शन चाहते हैं, वो वहां पर डेमोक्रेसी चाहते हैं. ये सारे वो ऑटोक्रेट्स हैं कि जो अपने अपने खित्ते के अंदर मुतलकुल आनान हुक्मरान हैं. ये किसी सूरत इस खित्ते के अंदर एक पॉपुलर मूवमेंट नहीं देखना चाहते जिसके नतीजे में एक अवामी हुकूमत कायम हो जाए, क्योंकि ये उसका इंपैक्ट बॉर्डर्स के बाहर आएगा. उसके नतीजे में इन्हें अपने मुल्कों के अंदर चेंज की सदा सुननी पड़ेगी, लिहाजा ये उसको बर्दाश्त नहीं करते. नाम अब क्या देते हैं, चूंकि ये साइकोलॉजिकल वारफेयर है, नाम इसको दे रहे हैं कि ये हरमैन शरीफैन पर हमला है. हरमैन शरीफैन पहले कभी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, उसके बाद ये जो ये शरीफ मक्का है उनके पास था, उसके बाद सऊदी अरब के ये मौजूदा हुक्मरान, ये इंग्लैंड के नतीजे में, इंग्लैंड की जब यहां पर ऑक्यूपेशन था तो उसके नतीजे में इनको यहां पर हुक्मरान बनाया गया था. तो इस इलाके के अंदर क्या डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए? क्या इस खित्ते के अंदर लोगों को अपने हकूक नहीं मिलने चाहिए? एक ऐसा मुल्क कि जो एक हिजाब याफ्ता औरत को अपने मुल्क के अंदर ड्राइवर करने की इजाजत नहीं देता, वो ऐसे नॉर्म्स की बात करता है कि हम इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, इसलिए हम उसको इन्वेट कर रहे हैं, इसलिए हम उसके लेजिटिमेट प्रेसिडेंट जो है उसको रिस्टोर करने के लिए कह रहे हैं.
जी अलामा साहब, आपको क्या, आपको आपको क्या रिजर्वेशंस हैं?
मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूं,
अभी कहूं कि वो मजलूम जिन पर कल भी जिनके बच्चे मारे गए हैं केमिकल वेपन्स के साथ शाम के अंदर, वो भी तो अवामी मूवमेंट है. और फिर मुझे ये बताइए कि ईरान को किसने इख्तियार दिया है कि ई जर्रैल जाके जो है वो यमन के भागियों के साथ मीटिंगें करे और शाम के अंदर जाके ईरानी जो है वो सिपा लड़े, और हिजबुल्ला को किसने इख्तियार दिया है कि वो पाकिस्तान से लेकर यमन तक जो है लोगों को ट्रेन करती फिरे। ये सारा कुछ जो है अगर शाम में हो तो वो नजायज है। शाम में अवाम निकले अपने हक के लिए तो उनको कत्ल कर दो, उनको मारो, उनके ऊपर केमिकल वेपन इस्तेमाल करो। और यमन के अंदर जहां पर जो है अक्सरियत जो है वो इन होसी बागियों के खिलाफ है और इन होसी जो है गद्दारों के खिलाफ है, वहां पर जाके मुदाखलत करो, वहां से सऊदी अरब की जो है सिपाह उसके बॉर्डर पर हमले करो और वहां पर बैठकर जो है उनको तैयार करो। ये मुझे तो ये मंतिक समझ नहीं आती। अगर अवामी मूवमेंट है तो फिर आज ये शराजी साहब जरा ऐलान करे ना कि जो शाम के अंदर अवामी मूवमेंट है ये उसकी ताईद का ऐलान करे। वो कभी नहीं करेंगे, इसलिए कि वहां बशार अल असद जैसा सफात और जालिम बैठा है और वहां ईरान उसकी पुष्टि कर रहा है। क्या पूरे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, आलमी मीडिया के अंदर ईरानी जनरलों
की तस्वीरें मैं ये बताता हूँ? मैं इनके साथ कोई डायलॉग नहीं, मेरे भाई आपकी बात मुकम्मल हुई, मेरी बात सुनिएगा। मैं आपके साथ डायलॉग नहीं करना चाहता। मुझे कोई ईरान या सऊदी फोबिया नहीं है, मुझे पाकिस्तान फोबिया है। मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस मुल्क के किसी एक फौजी का वहां जाकर बेगुनाह वहां के मुसलमानों के खून में हाथ रंगते देखना नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वहां बशर असल बैठा है, आए हम डेमोक्रेसी की हिमायत करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी की उस खत्ते के अंदर हिमायत का मतलब दाइश और नुसरा की हिमायत नहीं है क्या? मुझे बताएं, शामी हुकूमत ने वहां लोगों को जिंदा जलाया है या उर्दन के पायलट को इन्होंने जिंदा जलाया है? मुझे बताएं, वहां चर्चों को शामी हुकूमत ने तबाह किया या इन्होंने जिंदा तबाह किया है? वहां पर बैड एंड वर्स की बात है। मैं शामी हुकूमत को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आप ये रेप्लिका नहीं कर सकते हैं इस खित्ते के अंदर आप ये वाली चीज को दोहरा नहीं सकते हैं। आए हम कोई नॉर्म्स और कोई इखलाकी अकदार लेकर आए, क्या इस खित्ते के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यमन के लोगों को अपने खित्ते के और अपने मुल्क के मामलात को खुद हल करने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए नहीं निकलते हैं, क़िबला अव्वल की आजादी के लिए नहीं निकलते हैं, फलस्तीनी सुन्नी की आजादी के लिए नहीं निकलते हैं?
अच्छा, अगर आप दोनों
यमन के अंदर
नजर आते हैं, दोनों इजाजत ले, माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, अगर आप दोनों इजाजत हैं, आप दोनों से मैं पहले आई अपोलोजाइज, मैं पहले ही कह रही हूँ माइंड ना कीजिएगा सर, मगर अभी जो हो रहा है ना ये डिबेट जो हो रही है, नो लव लॉस्ट फॉर जनरल जियाउल हक, मगर शायद उन्होंने बिल्कुल खूबसूरती से इस डिबेट को औरियत हमारी क्या है मुस्लिम उम्मा की उसका निचोड़ बता दिया था। मुलाहजा कीजिए।
I would like to ask Abu Ammar. Abu Ammar, who sacrificed you in Lebanon? Who sacrificed you in Syria? Who sacrificed you in the rest of the world? Today, here is a man sitting, whom we all recognize as the representative of the Palestinians. Where are the Palestinians today? And your Majesty, most humbly, I wish to point out that we have declared ourselves to the Muslims. Look it in our hearts. We are black. We have double standards. For Palestinians being forsaken by Egypt, we debar Egypt for entry into Organization of Islamic Conference. Muslim, non-aligned member of this Organization of the Islamic Conference was subjugated by force by a superpower. I am their neighbor. The Organization of Islamic Conference has passed 10 resolutions. That neighbor is still there. There are friends, my brothers who are sitting here, who came and told me that I should go and shake hands with my next door neighbor because it has been held by a superpower. For them, we have that standard. For Egypt, we have a different standard. For Palestinians, we have a different standard.
अगेन ऐसे नो लव लॉस फॉर द मैन, मगर क्या ही गलत कहते हैं जनरल जियाउल हक, तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने दिलों में झांक के देखो, ये दिल काले हैं। बाकी तुर्की हो, मिस्र हो, सऊदी अरेबिया हो, पाकिस्तान हो, जिधर अपना मुफाद होता है उसी पॉलिसी को टो किया जाता है, मिल भी जाते हैं, अपोज भी कर जाते हैं, मुस्लिम उम्मा के हवाले से कोई नहीं सोचता, एक होने के हवाले से कोई नहीं सोचता। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, जियाउद्दीन साहब इसके ऊपर बात करते हैं, बिकॉज दैट एग्जैक्टली सीम्स टू बी हैपनिंग टुडे एज वेल। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। जनरल जियाउल हक ने कहा कि हम मुनाफिक लोग हैं, दिलों में झांक के देखो ये दिल काले हैं। क्या ही गलत कहा जियाउद्दीन साहब। अब मशरिक वुस्ता में बात हो रही है एक जॉइंट अरब फोर्स बनाने की, इसमें बशर अल असद तो नहीं होगा। ये किसके खिलाफ लड़ेगी ये फौज? ये शिया फौज है, सुन्नी फौज है, ये इसराइल से टक्कर लेगी फलस्तीनियों के हक में नहीं लेगी?
मेहर, हम दूसरों को क्या कहेंगे, हम खुद इस मुल्क में जितने इस्लाम के नाम पे मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है पिछले 10 सालों में, कोई एग्जाम्पल और नहीं मिलता। ये जो जियाउल हक साहब ने जो बात की है वो बातों के तो बादशाह थे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बीज बोया है आज हम सफर कर रहे
हैं। आयरोनिक उनका ये कहना।
तो ये जाहिर है कि जो कुछ भी अरब ममालिक में इस वक्त हो रहा है, एक अरब जो गरीब तरीन अरब मुल्क है अमन, उस पर अमीर तरीन अरब मुल्क हमला कर रहा है। वो किस वजह से हमला कर रहा है अभी तक समझ नहीं आ।
और यूनिफाइड अरब फोर्स इसलिए नहीं तश्कील दी जा रही कि दाइश के साथ कन्फ्रंटेशन करें या अलकायदा के ट्रेसेस यमन से हटाएं या कोई ऐसा काम करें।
और एक दफा जंग जब शुरू हो जाती है ना तो उसका एंड किसी को नहीं पता होता है।
तो पावर की जंग है, इक्तदार की जंग है,
तो ये कहां
कंट्रोल की जंग है,
तो हम क्यों?
और इसके अंदर आपके नजदीक मुख्तसरन फरमाइए सेक्रेटेरियन ओवरटोन्स कितने हैं?
सेक्रेटेरियन ही है ना, ये जो दोनों में बहस हो रही थी अभी आपने जो प्रोवोक कर दी वो बहस अगर बात सही है कि ये शिया सुन्नी का मसला है तो हमें तो उससे बहुत दूर रहना चाहिए, हमें उस आग में
नहीं। साहब आपने बुरा तो नहीं मनाया?
मैं भी इसे शिया सुन्नी का मसला समझता ही नहीं हूँ, यमन के मसले को। मैं तो आपको अर्ज किया कि वहाँ
आप नहीं समझते ना, जियाउद्दीन साहब कह रहे मसला ही है।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अगर ये बहस चल रही है, खुद सऊदी अरेबिया ने
अंडरटोन्स हैं, बाजी अंडरटोन्स।
हाँ, अगर ये अंडरटोन्स हैं तो हमें इस झगड़े में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए।
जी अलामा,
बिल्कुल ठीक बात है जियाउद्दीन साहब की कि हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए इस मसले में, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो कुछ कहा जा रहा है और जो कुछ माजी में आपका एक तसलसल है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का, आप उसे बयक जुम्बश कलम ख़त्म कर देंगे या आप ये बात कहेंगे जो बात कही जा रही है? और मेरा ख्याल है कि इस बात से पूरी आलम इस्लाम में किसी को इनकार नहीं होगा कि अगर सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम से कोई खेलने आएगा तो फिर सरबराह ने कहा कि हम जो है हज्जाज मुकद्दस पे हमला करेंगे, और हज्जाज मुकद्दस जो है वो जद्दा से शुरू हो गए मक्का मदीना ये सारे उसमें शामिल है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये आखिर क्या वजह है कि यहाँ से उठ के ईरान जाके यमन में
हो रहा बहुत कुछ है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या ये जस्टिफाई करता है इस अटैक को, क्या ये जस्टिफाई करता है हमारे किरदार को?
यमन की कानूनी हुकूमत ने सऊदी अरब से मदद मांगी है, और अगर आप कहते हैं कि ये बागी जो है,
हम तो बड़े एहसान मंद है सऊदी अरेबिया के, अगर उसमें सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो हमारा फर्ज पड़ता है कि हम जाएं उनकी मदद करें। लेकिन अगर सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं हो रहा है, अरमेन शरवेन पे हमला नहीं हो रहा है, तो हम क्यों चले?
मेरा ख्याल है नहीं जा रहे,
इसकी लड़ाई है।
मेरा ख्याल है ना वो हमें कह रहे हैं कि आप यमन के लिए आए ना हम जा रहे हैं, आज तो सारा कुछ सामने आ गया, ये बिला वजह की हाइप क्रिएट की थी।
सर उनका मीडिया, माजरत के साथ उनका मीडिया जो हमारी तरह आजाद नहीं है, उनका मीडिया जो बड़ा पाबंद है, जिसके ऊपर बड़े लॉक लगाए गए हैं, ताले लगाए गए हैं, वो भी फॉरेन पॉलिसी इश्यूज वगैरह के ऊपर जो बड़ा सोच समझ के बात करता है, वो 4 दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमायत कर दी है, पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा
है। अगर हमारी ISPR तरदीद कर रहा है, हमारा डिफेंस मिनिस्टर तरदीद कर रहा है, हमारा वजीर आजम का तर्जुमान तर्दीद कर रहा है, तो उनकी भी कोई अहमियत है कि नहीं है, या हम कहें ये सब झूठ बोल रहे हैं?
बिल्कुल अहमियत है, 4 दिन लेट कर रहे हैं, बट बेटर लेट देन नेवर, दे रहा है दुरुस्त है। मुझे बताइए सिराजुल हक साहब की बात मुख्तसरन खत्म हो गया है। शिराजी साहब, सिराजुल हक साहब कहते हैं कि ये किसी तरह कंफर्म कीजिए या गारंटी कीजिए इराक ईरान वॉर के अंदर जो लाखों मुसलमान मारे गए थे वो एक बार फिर पूरा एपिसोड रिपीट
बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
दुरुस्त फरमाया है, गलत नहीं है, इसलिए कि एक तो ये है कि ये एक छोटी सी वार नहीं है, ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो इमर्ज करेगा, ये बड़ा वाजे तौर पर नजर आ रहा है। मैंने आज चूंकि आपके प्रोग्राम से आने से पहले कोशिश किया कि ताज़ा करंट अफेयर को स्टडी करूं, तो मैंने देखा कि अब्दुल मालिक अल हौसी ने तकरीर की है और उसने ये कहा है कि अब तक हम डिफेंसिव हैं, अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन इसके बाद दुनिया आखिर हमारे पास क्या जवाब है कि हम मुसलसल ये जुल्म सहते रहेंगे और उसको रिटेलिएट नहीं करेंगे? फर्ज करें वो रिटेलिएशन करते हैं, फर्ज करें और वो उस खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो फिर ये इसको दोबारा ये कह देंगे कि सऊदी अरब की सलामती पे हमला हुआ है। जब आप किसी की सरजमीन इन्वेड करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा, ये नेचुरल है, वो मर रहा होगा तब भी रिटेलिएट करेगा, ये रिटेलिएशन आएगी और उसके नतीजे में इस खित्ते में हालात खराब होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिराज।
मैं अलामा साहब की एक बात करना चाहूंगा, उनकी
मैचेस ऑफ कोर्स आर नॉट सो सिंपल, इतने सादा नहीं है कि जिस तरह शायद दिखाई देते हैं, लेकिन हमारी दुआ इतनी है कि एटलीस्ट सादा ना सही मगर फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी जरूर हो, सीक्रेसी बिल्कुल ना हो, आवाम को एतमाद में लिया जाए, ना कि हर बड़े इशू के ऊपर गुमराह किया जाए या झूठ बोला जाए या गलत बयानी की जाए। मुझे दीजिए इजाजत, आई विल सी यू ऑल टुमारो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।